अध्याय 32 माता और बालक। गृह सेवा के दासत्व के बंधन में व्यस्त रहने की अपेक्षा स्त्री एवं माता अध्ययन के लिए समय निकाले, जिससे उसकी ज्ञान वृद्धि हो, कि वो अपने पति की सहयोगी बन अपने शिशु की विकसित बुद्धि की प्रगति से अभिज्ञ रहे। अपने प्यारे जनों के संपर्क के अंतर्गत जो सुअवसर उसे मिले उनका बुद्धिमानी से सदुपयोग करके उनके जीवन को आदर्श बनाने में सहायक हो। वो ध्यान एवं मनन के लिए अवसर निकाले कि प्रिय उद्धारकर्ता उसका परिचित मित्र एवं दैनिक साथी बन सकें। समय निकालकर पवित्र वचन का अध्ययन करे अथवा अपने बालकों के साथ खेतों में जाकर परमेश्वर की सुंदरता का अवलोकन करके ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करें। स्त्री सदैव प्रसन्नचित रहे। दैनिक कार्य से निवृत्त होने पर सिलाई बुनाई में लीन रहने की अपेक्षा अपने कुटुंब के साथ मनोरंजन में समय बिताए। जिस परिवार में ये हो उसके पुरुष क्लबों इत्यादि सामाजिक मनोरंजनों के स्थानों की अपेक्षा अपने कुटुंब की सहभागिता में रहना रुचिकर समझेंगे। अनेक बालक कोने की दुकान पर जाकर समय तथा पैसा बर्बाद करने से बचेंगे। अनेक लड़कियां ओछी कुमार्गगामी से बचेंगी। इस प्रकार घर का प्रभाव जैसी परमेश्वर की योजना है माता पिताओं तथा बाल बच्चों के लिए एक आजीवन आशीष का कारण बन जाएगा। बहुधा ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या माता अपनी स्वेच्छा पर कभी न चले। बाइबल सफाई से कहती है कि पति परिवार का सिर है, पत्नियों अपने पतियों के अधीन रहो। यदि सलाह यहीं समाप्त हो जाती तो पत्नी का पद कोई चाहने योग्य वस्तु न होती। पर इसी सलाह के अंत में लिखा है, जैसा प्रभु में सोहता है। कुटुंब के मध्य में जब तक परमेश्वर के आत्मा का सहवास न हो तो उसमें अनुरूपता नहीं आ सकती। यदि पत्नी का जीवन मसीह के आत्मा की अगुवाई में चलता है तो वो अपने वचन में सावधान होगी, अपनी भावना को वश में रखेगी, वो अधीनता स्वीकार करेगी। ये सब होते हुए भी वो अपने को दासी नहीं पर अपने पति का साथी समझेगी। यदि पति परमेश्वर का सेवक हो तो वो अपनी पत्नी पर प्रभुत्व न जमाएगा, वो न स्वच्छंद होगा न अनुचित मांग करेगा। पारिवारिक स्नेह की सुरक्षा के लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा ही है, क्योंकि यदि हमारे घर में परमेश्वर के आत्मा का निवास है तो वो स्वर्ग बन जाएगा। यदि एक से गलती हो जावे तो दूसरा उदासीनता न दिखलाकर मसीह के समान सहनशीलता दिखलाएगा। पितृत्व। प्रत्येक होनहार माता अपने चहुं ओर किसी भी प्रकार का वातावरण होते हुए भी आनंदमय, प्रसन्नचित, संतोषी मनोवृत्ति प्रदर्शित करे। ऐसा करने से उसकी संतान का शारीरिक एवं नैतिक स्वभाव सुयोग्य बनाया जाकर माता के प्रयत्नों का 10 गुना मूल्य चुकाया जाएगा। न केवल ये, पर ऐसा करने से उसमें प्रसन्नचित, विचारशील बनाने की आदत बनेगी, जो उसके कुटुंब तथा मित्रों पर प्रतिबिंबित होगी। अधिकांश रूप में उसके शारीरिक स्वास्थ्य की उन्नति होगी, उसके जीवन अस्त्रों में बल संचार होगा, जिससे उसके रक्त में वो तीव्रता होगी जो उसे सुस्त एवं निराश रहने पर कदापि न होती। उसकी प्रफुल्लित से उसमें नैतिक एवं बल की वृद्धि होगी। उसकी इच्छा शक्ति उसके मनोविचारों पर प्रतिबंध न लगाकर उसके स्नायुमंडल को सबल बनाएगी। यदि कोई संतान इस पैतृक बल से वंचित रह जाए तो माता पिता को सावधानी से काम लेना चाहिए। उनके व्यक्तित्व संबंधी नियमों पर विशेष ध्यान देने से प्रत्येक बात के लिए सुयोग्य वातावरण स्थापित किया जा सकता है। भावी माता का आत्मा परमेश्वर के प्रेम के अंतर्गत रहें, उसके मन में शांति हो, वह प्रभु यीशु के वचनों पर मनन करके प्रेम में विश्राम पाए। ये भी स्मरण रखें कि माता बनकर वह परमेश्वर का सहकर्मी, पति पत्नी सहकारी बने। यदि माता पिता अपनी संतान को उसके पैदा होने के पूर्व तथा पश्चात परमेश्वर की वेदी पर समर्पित कर दें तो कैसे सुंदर संसार का निर्माण होगा। अनेकों माता पिता समझते हैं कि संतान पर उनका प्रभाव क्षणिक है, पर परमेश्वर की दृष्टि में यह सत्य नहीं है। परमेश्वर के दूत द्वारा जो संदेश दिया गया और जो गंभीर रूप में 2 बार उच्चारा गया हमारे लिए विचार योग्य है। मनोह की पत्नी। एक इब्रानी माता को कहे गए शब्द हर युग की माता से कह रहे हैं, वह सावधान रहें। दूत ने कहा, जो जो आशा मैं देता हूं वह मानो। माता की आदतें बालकों की कुशलता को प्रभावित करती हैं। उसको भूख एवं भावनाओं पर किसी नियम विशेष का नियंत्रण अनिवार्य है। बालक रूपी देन में परमेश्वर के अभिप्राय पूरा करने के निमित्त उसे कुछ बातों पर प्रतिबंध लगाना है अथवा कुछ के विपरीत काम करना है। बालक के पगों को उलझाने के लिए संसार में फंदों की कमी नहीं है। विषयासक्त भोग विलास एवं स्वार्थमय जीवन सैकड़ों पुरुषों को आकर्षित करते हैं। जो मार्ग आज आनंदमय प्रतीत होता है उसके गुप्त खतरों तथा भयात्मक अंत को मनुष्य देख नहीं सकता। वासना और भूख तृप्ति में लीन होकर मनुष्य बल का क्षय होता है, जिसके फलस्वरूप सैकड़ों इस लोक एवं परलोक के निमित्त नाश हो जाते हैं। माता पिताओं को स्मरण रखना चाहिए कि बच्चों को इन परीक्षाओं का सामना अवश्य करना होगा। बालक के पैदा होने के पूर्व ही से तैयारी की जानी चाहिए कि बालक दुष्टता के संग्राम में सफलतापूर्वक लड़ सकें। बालक की पैदाइश के पूर्व यदि माता स्वार्थी, उतावली अथवा दूसरों पर दबाव डालने वाली हों तो प्रवृत्तियां बालक के चरित्र को प्रभावित करेंगी। इस प्रकार अनेकों बालक दुष्टता की अजय प्रवृत्तियां पैतृक संपत्ति के रूप में पाते हैं। माता यदि अटल रूप से सत्य नेम पर बनी रहें, यदि वह संयमी एवं त्यागी हो, यदि वह दयालु, विनम्र और परस्वार्थ हो, तो वो इन बहुमूल्य सद्गुणों को अपनी संतान को प्रदान कर सकेगी। शिशु माता के लिए एक ऐसा दर्पण है जिसमें वो अपनी निज आदतों व आचरण का प्रतिबिंब देख सकती है। इन छोटे बालकों के समक्ष तब माता को व्यवहार एवं भाषा में कितना सावधान रहना चाहिए। संतान में माता जिन सद्गुणों की उत्पत्ति एवं उन्नति देखना चाहती है उन्हें वो स्वयं अपने जीवन में प्रथम स्थान दे। इस समय उसके वस्त्रों पर विशेष ध्यान दिया जावे। ठंड से वस्त्र के अभाव में अपनी रक्षा करने के लिए अत्यधिक मात्रा में उसे अपनी दैहिक शक्ति का अनावश्यक प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि माता पिता को स्वादिष्ट एवं बलवर्धक भोजन न मिले तो उसके रक्त की मात्रा एवं गुण में घटी आ जावेगी। उसके रक्त संचार में स्फूर्ति न होगी और संतान का भी वैसा ही हाल होगा। जिस भोजन से शरीर के पोषणार्थ शुद्ध रक्त का संचार होता है उस भोजन को बच्चा पचाने में असमर्थ रहेगा। माता एवं शिशु की उन्नति ऋतु के अनुकूल वस्त्र एवं पौष्टिक भोजन पर निर्भर है। दूध पिलाने वाली माताओं की स्थिति। नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ का निर्माण प्रकृति द्वारा होता है। बालक को इस आहार से व्यर्थ वंचित नहीं रखना चाहिए। अपनी सुविधा अथवा सामाजिक मनोरंजन के हेतु शिशु पोषण के उत्तरदायित्व से माता का स्वतंत्र होना एक हृदयहीन कार्य है। वो एक सूक्ष्म समय है। अनेकों माताएं जब वे अपने शिशुओं को दूध पिलाती हैं तो वे अत्यधिक परिश्रम करती हैं। वे भोजन पकाते समय अपने रक्त को सुखी डोलती हैं। इसका शिशु के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये उस गर्म दूध को विषाक्त बना देता है जो बालक के लिए हानिकारक है। माता के मस्तिष्क की स्थिति का प्रभाव भी बालक पर पड़ता है। यदि माता दुखित, खिजलाने वाली, उद्वेगी हो तो बालक का पोषण भी प्रभावित होगा, जिससे उसके पेट में दर्द, मरोड़ होगी, बेहोशी के दौरे आना भी संभव है। बालक माता के दूध के द्वारा जिस रूप में पौष्टिक पदार्थ पाता है वो भी न्यूनाधिक रूप में उसके चरित्र को प्रभावित करता है। इस कारण माता के लिए अत्यावश्यक है कि प्रसन्नचित रहकर अपनी आत्मा पर पूरा नियंत्रण रखें। ऐसा करने से बालक का भोजन दूषित नहीं होता है। बालक के साथ व्यवहार में माता का शांतमय स्वस्थचित बालक के जीवन में प्रविष्ट होकर उसके मस्तिष्क के निर्माण में कार्यशील होता है। यदि बालक धैर्यहीन हो अथवा उत्तेजित हो तो माता का सावधानीपूर्व धैर्यशील व्यवहार बालक के सुधार में सफल होकर उसे स्वस्थ बनाएगा। नियमित कोमल प्रेमपूर्ण लालन पालन। बालक माता पिताओं को परमेश्वर की ओर से अमूल्य थाती के रूप में दिए जाते हैं। माता पिताओं से एक दिन लेखा लिया जाएगा। बालकों के लालन पालन में अधिक समय सावधानी एवं प्रार्थना का उपयोग होना चाहिए। उनकी उचित शिक्षा की अति बालकों के रोगग्रस्त होने का कारण बहुधा दोषपूर्ण पालन प्रबंध ही होता है। अनियमित भोजन ऋतु के प्रतिकूल वस्त्र, रक्त संचालन को सुव्यवस्थित रखने के लिए व्यायाम की कमी, शुद्ध वायु की कमी बालक के रोगी होने के कारण हो सकते हैं। माता पिता को चाहिए कि इन कारणों को खोज करके शीघ्रातिशीघ्र उनका निवारण करें। बालक के शैशव काल ही से क्षुधा निवारण में लीन करके मानो उसे शिक्षा दी जाती है कि उसके जीवन का उद्देश्य खाना ही है। बालक के चरित्र निर्माण में माता का भारी हाथ रहता है। या तो माता बालक को भूख पर नियंत्रण रखने की शिक्षा दे सकती है, या उसे भूख के वशीभूत होकर पेटू बनने का अवसर प्रदान कर सकती है। जब माता कार्यव्यस्त हों और बालक सताए, तो बालक को समाधान करने के बदले माता उसे कुछ खाने की वस्तु पकड़ा देती है। इससे क्षणिक कष्ट हरण तो हो जाता है, पर अंत में काम बिगड़ जाता है। आवश्यकता न भी होने पर बालक के पेट में भोजन ढूंसा जाता है। यहां तो आवश्यकता केवल इस बात की थी कि माता कुछ समय निकालकर बालक पर ध्यान दे, पर माता ने अपने समय में बालक के मनोरंजन में लगाने के लिए अति बड़ाई के लिए अपने घर की सुंदर रीति से सजाना व सुव्यवस्थित ढंग से भोजन पकाना अधिक विचारणीय थे। बालक की वेशभूषा की व्यवस्था करने में फैशन एवं आकर्षण का विचार तजकर उसके स्वास्थ्य, सुविधा तथा आराम का अधिक विचार करना चाहिए। वस्त्रों को आकर्षक बनाने के लिए माता को कशीदा आदि काढ़ने में अपना समय बर्बाद करके इतना अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप उसके स्वयं अथवा बालक के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़े। शिशुपालन कार्य में जब उसे विश्राम करना चाहिए, सिलाई इत्यादि कामों में माता अपनी आंखों तथा देह को बुरी तरह न थकाए। माता को स्वयं बल वृद्धि को अपना कर्तव्य समझना चाहिए। बालक के शासन हेतु स्वयं शासन की आवश्यकता।
बालक के शासन में अनेकों समय माता स्थिर परिपक्व इच्छा शक्ति को भेंट बालक की शासनहीन इच्छा से होती है। ऐसे समय माता को सावधानी एवं बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए।
बुद्धिहीन व्यवस्था, निष्ठुर दबाव से बच्चे की भारी हानि होती है। जहां तक हो सके इस सूक्ष्म समय को नहीं आने देना चाहिए। इससे माता तथा बालक दोनों की हानि होती है। यदि ऐसा अवसर आ भी जावे तो बालक की इच्छा माता को इच्छा के अधीन को जानो चाहिए। माता अपने आप पर पूरा प्रतिबंध रखे, जिससे बालक की भावनाओं को आघात पहुंचाने का अवसर न हो। डांट डपट कर आज्ञा न चलाएं। नम्र एवं कोमल स्वर बनाए रखना लाभकारी होगा। बालक के साथ उसका व्यवहार ऐसा हो जिससे वो मसीह के समीप आ सके। वो सदा स्मरण रखे कि परमेश्वर निरंतर उसका प्रेमी, सहायक एवं सामर्थ है। यदि माता बुद्धिमान मसीही है तो अपने बालक पर दबाव डालकर वश में न करना चाहेगी। उसकी सदैव यही प्रार्थना होगी कि दुष्ट उसके बालक पर विजयी न हो। ज्यों ज्यों वो प्रार्थना करे, उसे आत्मिक जीवन के नवीनीकरण का बोध होगा। जो शक्ति उसके जीवन में कार्यशील है, उसको वो अपने बालक के जीवन में कार्य करते देखेगी। वही कोमल और आज्ञाकारी बनेगा। लड़ाई जीत ली गई। माता का धीरज एवं दयालुता, बुद्धिपूर्ण शब्द सफल हुए। जिस प्रकार वर्षा के उपरांत धूप होती है, वैसे ही तूफान के बाद शांति। और वे स्वर्गदूत जो सब कुछ देख रहे हैं, आनंद के गीत गाने लगते हैं।
पति पत्नी के जीवन काल में सूक्ष्म समय आते हैं। यदि वे परमेश्वर के आत्मा के वश में ना हों, तो जिस अनाज्ञाकारी स्वभाव का प्रदर्शन करता है, वही माता पिता में भी पाया जाएगा। दो निष्ठुर इच्छाओं के संघर्ष का परिणाम वही होता जो चकमक पत्थरों को रगड़का होता है।